नमस्कार भारत, आज है 11 अगस्त दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित कश्मीर में संविधान की धारा 35A को लेकर गरमाई सियासत, सत्ताधारी गठबंधन में शामिल बीजेपी से ही उठे विरोध के स्वर।
अगर ऐसा हुआ कि 35A को सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप किया तो पीडीपी के लिए बुरी मुश्किलात है, उनको हुकूमत से अलग होना पड़ेगा।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्लामाबाद से लाहौर तक कर रहे हैं रोड शो। पूर्व पाकिस्तानी सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा भारत से संबंध बेहतर बनाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की थी।
और वो कह रहे हैं मैंने वो सेल आउट कर दिया, मैंने कोई सेल आउट नहीं किया, मैंने तो हिंदुस्तान को खींच के नेगोशिएटिंग टेबल पे मैं लाया।
आज रात आसमान में दिखेगा रंग बिरंगी आतिशबाजी का दिलचस्प नजारा, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को लेकर और सख्त रवैया अख्तियार करते हुए पत्रकारों से कहा है कि उनकी उत्तर कोरिया को दी गई बर्बाद करने की पहली धमकी बहुत ज्यादा सख्त नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि उत्तर कोरिया अमरीका के खिलाफ कुछ करता है तो उसे बहुत बहुत घबराने की जरूरत है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वो चाहेंगे कि मामला बातचीत से खत्म हो जाए। ट्रंप ने अपने उग्र रवैये की आलोचना को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें अमरीकी सेना और अधिकतर सीनेटरों का समर्थन प्राप्त है। गुरुवार को उत्तर कोरिया ने अमरीका के ग्वाम क्षेत्र को बर्बाद करने के इरादे से 4 मिसाइलें दागने की अपनी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी और कहा था कि तर्कहीन ट्रंप से सिर्फ शक्ति से ही निपटा जा सकता है। इसी बीच अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ सैन्य युद्ध विध्वंसक होगा और कूटनीतिक प्रयासों के नतीजे मिलने लगे हैं। जेम्स मैटिस ने कहा,
माय पोर्टफोलियो, माय मिशन, माय रिस्पांसिबिलिटी,
मेरा काम, मेरा मिशन और मेरी जिम्मेदारी जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प देना है। हालांकि इस वक्त विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत निकी हेली, आप देख सकते हैं कि अमेरिका के प्रयास कूटनीतिक हैं और इसके नतीजे भी मिल रहे हैं और मैं अभी इस पर टिके रहना चाहता हूं। युद्ध की त्रासदी को सब जानते हैं, इसे किसी और परिभाषा की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि युद्ध हुआ तो नतीजे भयानक होंगे। ये थे अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के शब्द। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यदि उत्तर कोरिया अमरीका पर हमला करता है तो चीन को तटस्थ रहना चाहिए। अखबार ने यह भी कहा है कि यदि दक्षिण कोरिया और अमरीका उत्तर कोरिया में शासन परिवर्तन की नीयत से हमला करते हैं तो चीन को हस्तक्षेप करके इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। अमरीका उत्तर कोरिया के प्रति नरम रुख को लेकर चीन की आलोचना करता रहा है। क्यूबा में रह रहे अमरीकी राजनयिकों को सुनने में आई दिक्कतों की विचित्र कहानी में एक और मोड़ आ गया है। अब हवाना में कनाडाई दूतावास के कम से कम एक सदस्य ने बहरापन समेत ऐसे ही लक्षण होने की बात कही है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक क्यूबा के एजेंटों ने अमरीकी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सोनिक उपकरणों से हमला किया है। हालांकि क्यूबा का कहना है कि वो इन घटनाओं से चकित है। इन घटनाओं की प्रतिक्रिया में अमरीका ने क्यूबा के 2 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। यूरोप के बाजारों में दूषित अंडे पहुंचने का स्कैंडल और व्यापक हो रहा है। डेनमार्क में 20 टन दूषित अंडे बाजार में बेच दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि इनमें जानवरों को जुओं और पिस्सुओं से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक फिप्रोनिल के अंश मिले हैं। पूर्वी यूरोपीय देश रोमानिया और स्लोवाकिया ने भी दूषित अंडे मिलने की बात कही है। यूरोपीय संघ ने खाद्य पदार्थ उद्योग में फिप्रोनिल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर रखा है। बाजार में पहुंचे दूषित अंडे नीदरलैंड से आए हैं जबकि कुछ बेल्जियम और जर्मनी से आयात किए गए हैं। गुरुवार को नीदरलैंड्स और बेल्जियम में हुई छापेमारी में अधिकारियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वेनेजुएला की नई संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति मादुरो के लंबे और निडर भाषण का उत्साही स्वागत किया है। भाषण के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने कई बार खड़े होकर मादुरो के प्रति सम्मान प्रकट किया। नई संविधान सभा में अधिकतर लोग मादुरो के समर्थक हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो भारी विरोध का सामना कर रहे हैं। विपक्ष के बहुमत वाली संसद ने नई संविधान सभा को गैरकानूनी कहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 35A को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है, और राज्य में शासन कर रही बीजेपी पीडीपी गठबंधन में ही इसे लेकर मतभेद के सुर उभर रहे हैं। वैसे तो अब तक राज्य की सभी सियासी पार्टियां 35A में किसी भी तरह की छेड़छाड़ के विरोध को लेकर एकजुट रही हैं, लेकिन जब से ये चर्चा गर्म हुई है कि केंद्र की बीजेपी सरकार संविधान के इस धारा की समीक्षा पर विचार कर रही है, तब से जम्मू कश्मीर में सियासी दलों के कान खड़े हो गए हैं। वैसे तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन बीजेपी के एक विधान पार्षद रमेश अरोड़ा ने ये कहकर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया कि संविधान की धारा 35A उन्हें गैर कानूनी लगती है। उनके बयान का आशय समझने के लिए हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने उनसे बात की और पूछा कि उनके विरोध के पीछे क्या तर्क है।
आर्टिकल 35A के दो पहलू हैं, एक राजनीतिक पहलू है, एक लीगल पहलू है। जहां तक बात रही राजनीतिक पहलू की, तो मैंने उसके बारे में साफ कहा है कि भाई राजनीतिक पहलू पर अभी मसला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके डिसीजन के बाद दोनों पार्टी मिलकर आपस में डिसाइड करेंगी कैसे करना है। जहां तक बात रहा लीगल पहलू की, बींग एडवोकेट मैंने ये कहा है कि बींग एडवोकेट में ये 1954 में प्रेजिडेंशियल आर्डर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया गया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और उसके लिए डिफरेंट प्रोविजन है कि दो बोथ हाउसेस विल पास एनी अमेंडमेंट विद 2/3 मेजॉरिटी। दैट वे वो उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये रेजोल्यूशन जो पास करके, ये एक्ट पास करके या अमेंडमेंट पास करके कर सकते थे, वो नहीं किया है। इसलिए apparently it appears to be unconstitutional। इसलिए लीगल प्रोपोजिशन इसकी अलग है। लीगल प्रोपोजिशन में वैसे भी स्टेट के पास 370 के अंदर पावर दे रखी है, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट को डिफाइन करने की पावर है, टेरिटरी को डिफाइन करने की पावर है, जो POK ने C-24 रिजर्व रखने की पावर है, स्टेट के पास ऑलरेडी पावर्स हैं। फिर उसके बाद रेजिडरी पावर, जैसे कंकरेंटली सेंट्रलिस्ट और स्टेटलिस्ट रहती है, रेजिडरी पावर स्टेट के पास है, इसलिए स्टेट के पास एम्पल पावर रहती है कुछ इश्यूज को टैकल करने के लिए, लॉज बनाने के लिए। तो इन दैट इवेंचुअलिटी स्टेट अपना लॉ बना सकती है, उसमें स्टेट को कोई प्रोहिबिशन नहीं है। 35A के बारे में
ये थे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधान पार्षद रमेश अरोड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली में हैं, और माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले को लेकर मुलाकात कर सकती हैं। दो दिन पहले उन्होंने विपक्ष के नेता फारूक अब्दुल्ला और कल राज्यपाल NN वोहरा से भी मुलाकात की थी। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 35A के मसले पर बीजेपी और PDP का सत्ताधारी गठबंधन एकजुट रहेगा या उसमें विरोध के और स्वर उभरेंगे। यही सवाल किया हरिता कांडपाल ने वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी से।
देखिए, या तो बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूजन में है, या तो बीजेपी डबल स्टैंडर्ड से काम ले रही है। अगर देखा जाए कि बीजेपी पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर में पावर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बन गई है, और जब वो पीडीपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में आ गई, तो अगर देखा जाए जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी का पीडीपी के साथ है, उसमें उन्होंने माना है कि वो राज्य की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उसको सेफ गार्ड करेंगे। या तो उनको उस अपने एजेंडा ऑफ अलायंस पे एतबार नहीं है, या तो उन्होंने वो सिर्फ महज एक पीस ऑफ पेपर के तौर लिया है ताकि वो सरकार में साझेदार बने। तो मुझे लगता है कि ये शायद सियासतगिरी हो रही है, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है पहले से ही, बीजेपी का पहले दिन से ही उनका जो स्टैंड रहा है रियासत की स्पेशल पोजीशन के बारे में, वो इसको खत्म करना है, लेकिन उनकी मजबूरियां हो गई पावर में आने की, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो लेकिन जब आज इम्तिहान आया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो जो एक NGO है उन्होंने किया है, या तो बीजेपी RSS के प्रेशर में है और यहाँ से हुकूमत में रहने के प्रेशर में है। तो जो गृहमंत्री से मिली है महबूबा जी कल, और आज वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रही है,
तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी है हुकूमत पर और प्राइम मिनिस्टर पर।
लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि पीडीपी से ज्यादा मुश्किल इस वक्त जो है इस मसले पर बीजेपी के लिए खड़ी हो रही है।
मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि एक तो ये है कि बीजेपी को आज की डेट में ये स्पष्ट करना है कि उनका क्या स्टैंड रहेगा, मतलब गवर्नमेंट का, वो देखना पड़ेगा। और अगर दूसरी सूरत हाल ये बनी कि कहीं अगर ऐसा हुआ कि 35A को सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप किया तो पीडीपी के लिए पूरी मुश्किलात है, उनको हुकूमत से अलग होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल टाइम है।
इसके अलावा जो जो घाटी के लोग हैं उनके बीच किस तरह की हम प्रतिक्रियाएं देखते हैं जब इस तरह की बात सामने आती
है? उनका रिएक्शन जो है वो बहुत ही तेज है, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो कश्मीर का जो सियासी मसला है उस सियासी गुत्थी को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि जो भी हमारे पास है यहाँ पे उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये भी तासुर है कि अगर आर्टिकल 35A को ख़त्म किया जाए तो कश्मीर की जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, राज्य जो है, जो सबसे जो जो वाहिद रियासत है पूरी इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है कि बहुत सारे खदशात और अप्रहेंशंस हैं, जो मुझे लगता है कि कश्मीर में पहली बार जो है मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं और सेपरेटिस्ट एक हिसाब से अगर देखा जाए वो एक सेम पेज पे हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, इन लोगों ने भी मुखालफत की है, हड़ताल की कॉल दी है।
ये थे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी, जिनका मानना है कि आर्टिकल 35A के मसले ने राज्य के प्रमुख सियासी दलों और अलगाववादियों को भी विरोध के बहाने एकजुट होने का एक मौका दे दिया है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पद से हटाए जाने के बाद इस्लामाबाद से ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के रास्ते लाहौर लौट रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने उन्हें पद के अयोग्य घोषित कर दिया था। माना जा रहा है कि रास्ते में रैलियां और रोड शो के जरिए वो अगले साल के आम चुनाव को देखते हुए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर की ओर अग्रसर नवाज शरीफ का काफिला झेलम पहुंचा है। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने पाकिस्तान में बीबीसी उर्दू संवाददाता शहजाद मलिक से बात की और पूछा कि नवाज शरीफ इस रोड शो से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं।
जब से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उन्हें यूनानिमस फैसले में डिस्क्वालीफाई किया है, उसके बाद अब उनकी जमात के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो पब्लिक में जाएं और जाके उनको बताएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर से उन्होंने इससे अमल दरामद कर लिया है लेकिन उसको दिल से तस्लीम नहीं किया। तो अवाम में जाने का उनका मकसद यही था कि एक तो ये था कि वो अपनी जमात को जो है वो इंटेक्ट रखें, दूसरा ये था कि लोगों में जो एक ये परसेप्शन पाया जाता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी करप्शन पे या किसी किक बैक्स पे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, तो उसको इस परसेप्शन को ये इसको क्लियर करना है कि उन्हें ऐसे किसी भी आरोप में डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, बल्कि एक छोटे से माइनर इशू पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। इसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती लेकिन उनके साथ काफी ज्यादती हुई है। जब ये इसका जो गैदरिंग थी उससे जब वो अब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से इदारों को तनकीद का निशाना भी बनाया और उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा,
क्या मैंने करप्शन की थी? वो भी कहते हैं, उन जजों ने भी कहा कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। तो फिर आपको पूछना चाहिए कि जब नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला मनसब से?
तो साबिक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज सुबह रवाना होंगे लाहौर के लिए, और चूंकि यहाँ पर जो चीज नजर आई है कि बहुत बड़े ये लोगों की एक जो काबिल जिक्र तादाद है वो उनके लिए उनको वेलकम कर रही है, और ये कहा है कि शायद उनको लाहौर पहुंचने के लिए अभी मजीद 1 से 2 दिन लगेंगे। जो कि यहाँ से जहाँ पर उन्होंने स्टे किया था रात को, वहां से लाहौर का जो सफर है वो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है।
ये थे पाकिस्तान में बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक। पाकिस्तान और भारत जल्द ही ब्रितानी हुकूमत से अपनी आज़ादी के 70 साल पूरे करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने इन 7 दशकों में लोकतांत्रिक सरकारें भी देखी हैं और सैनिक शासकों का दौर भी देखा है, लेकिन इन दोनों ही तरह की सरकारों में किस तरह की सत्ता के अंतर्गत पाकिस्तान की ज़्यादा तरक्की हुई, इस बारे में एक सैनिक शासक का पक्ष जानने के लिए बीबीसी उर्दू के संवाददाता जावेद सुमरो ने खास बात की पाकिस्तान के पूर्व सैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफ से। सुनिए इसके कुछ अंश।
सिविलियंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आजकल की जो सिविलियन क़यादत है उसको आर्मी किस नज़र से देखती है? वो क्या समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उन पे उनको कोई भरोसा है नहीं है, क्या समझते हैं उनके बारे में?
देखें, आर्मी की हायरार्की का तो मुझे नहीं पता है उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, मैंने उनसे पूछा भी नहीं है, ना मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, लेकिन मुझे आर्मी का पता है कि वो डेफिनेटली मुल्क की सूरत हाल से खुश नहीं है। नॉट एट ऑल।
कभी खुश होते हैं किसी गवर्नमेंट में? खुश होते हैं?
आप मुझे बताएं, पहले मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं, कोई मुझे एक हुकूमत बता दें जहां मैंने जो ये 10 चीज़ें लिखाई थी आपको कि आवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की हो रही थी, आप मुझे एक हुकूमत बताएं जहां मुल्क तरक्की पे था और आवाम की खुशहाली थी, मुझे एक बता दें, और आवाम की खुशहाली थी, मुझे एक बता दें।
देखिए, ऐसे तो फैसला नहीं हो पाएगा।
नहीं नहीं, ये
मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ।
आप ऑब्जर्वर तो हैं ना।
मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नवाज शरीफ के ज़माने में हुई हैं।
क्या हुआ?
बिजली नहीं आई, बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इमारतें बनी हैं, एक्सपोर्ट हुई है।
आप ये अवॉइड ना करें, बात यह है कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है, लूट खसूट हो रही है, नेपोटिज्म हो रही है, अपने यार दोस्त, अपने चेले चमचे, अपने रिश्तेदार मिनिस्टर्स बने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर्स बने हुए, वो लूट कसूट कर रहे हैं, मुल्क में कोई तरक्की नहीं हो रही है, आवाम रो रही है। आप देख नहीं रहे पाकिस्तान में हर रोज़ तो वो सड़कों पे होते हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, वो कीमतें 4 गुना हो गई हैं, तनख्वाहें हैं नहीं।
भारत से और अफगानिस्तान से और अमरीका से काफ़ी कशीदा हो गए हैं, वो कहाँ पे खराबी हुई है, कैसे खराब हो गए?
देखें, हुकूमत मेरे ज़माने में तो बहुत अच्छे थे, हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे थे, हम तो अपने प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे थे, हम तो अमेरिका से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हमारे चीन से भी थे और रूस से भी थे।
पाकिस्तान में ये तासुर है कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे, फौज ने जो है वो स्ट्रॉन्ग
रोड़े अटका दिए
और उनको नहीं
बनाने दिए। वो बहुत कहते हैं मैंने किया।
और अफगानिस्तान में जो हालात ख़राब हैं तो शायद पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो वहाँ पे उन्होंने मेंडलिंग कर रहे हैं, इसलिए
ये प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ को समझे बगैर एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे हैं। भाई, चीज़ को समझो, उसकी बुनियाद समझो, उसकी रूट समझो। जहाँ तक नवाज शरीफ से आपके कहने का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब ने कुछ भी नहीं किया इंडिया के साथ, वो तो एक सेल आउट पॉलिसी पे थे, कश्मीर के ऊपर सेल आउट। ये जो मशहूर जो वो बस डिप्लोमेसी चली थी, वाजपेयी साहब जो आए थे वाघा बॉर्डर पे और आए यहाँ, उसकी जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें वर्ड कश्मीर वर्ड उसके अंदर है ही नहीं। और वो कह रहे हैं मैंने वो सेल आउट कर दिया, मैंने कोई सेल आउट नहीं किया, मैंने तो हिंदुस्तान को खींच के नेगोशिएटिंग टेबल पे मैं लाया।
पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ मानते हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादा तरक्की सेना के शासन में हुई, लोकतांत्रिक सरकारों ने तो देश को पीछे ले जाने का काम किया है। श्रोताओं, अपनी राय आप खुद कायम कर सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस छोड़कर खलबली मचाने वाले कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने दावा किया है कि वो और उनके साथ 7 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इन विधायकों को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। गुजरात में राज्यसभा की तीसरी सीट पर कांटे की टक्कर में कांग्रेस नेता अहमद पटेल जीत तो गए, लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी ने 2 विधायकों के वोट को रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दी है। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने महेंद्र सिंह वाघेला से संपर्क किया और पूछा कि राज्यसभा चुनाव से पहले चले सियासी ड्रामे के बीच उन्हें बीजेपी में जाने का निर्णय लेने में इतना वक्त क्यों लगा।
हम टोटल 13 विधायक थे, 6 लोगों ने इस्तीफा पहले दे चुके हैं, 7 बाकी के बचे, जो सब 3 लोगों ने ज्वाइंट भी बीजेपी कर लिए, बाकी के लोग हम ज्वाइंट बहुत जल्दी करने वाले हैं।
अभी अर्जेंट डिसीजन, रातों रात डिसीजन नहीं लिया हुआ है,
हमने 6 महीने पहले हमारे हाई कमांड और गुजरात के प्रभारी कामत साहब थे उनसे बात मोर देन 30 MLA ने बात किया थी कि हमें प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम किसी को नहीं था मगर MLA को ये प्रॉब्लम है, सब बात बताई थी उनको और उन्होंने बोला था हम बात करके आपको बताएंगे मगर 6 महीने तक कुछ बात नहीं बनी। तब धीरे धीरे नाराजगी हमारी बढ़ती गई, रातों रात हम नाराज होकर चले गए ऐसी बात नहीं है, बीजेपी अपने हिसाब से काम करती रही, हमको हमारी नाराजगी बीजेपी के सामने नहीं थी, हमारी नाराजगी कांग्रेस के सामने थी इसलिए हम बीजेपी में जा रहे और 20 साल से बीजेपी सरकार गवर्नमेंट में अच्छी तरह काम भी अपने हिसाब से कर रही है।
जी किस तरह की नाराजगी आप लोगों को है कांग्रेस में?
कांग्रेस में हाई कमांड को इतने प्रॉब्लम बताए कि हमारे सामने उम्मीदवार खड़े किए जा रहे, हमारे संगठन में कोई नहीं सुनता है, हमारे ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट में कोई नहीं सुनता है और हम पार्टी के लिए कुछ करना चाहते मगर पार्टी सपोर्ट नहीं करती, ये सब बातें हमने उस टाइम हमारे प्रभारी को बताई थी।
आपके पिता शंकर सिंह वाघेला क्या वो बीजेपी में नहीं जाने वाले? हालांकि उनके पार्टी छोड़ने के बाद ही जो है वो ये सारा संकट कांग्रेस के लिए एकदम खुल के सामने आ गया था।
हाँ जी, क्योंकि बापू ने 1 साल पहले चालू किया था कि भाई कांग्रेस में इतना इतना करो तो हम अच्छी तरह काम कर सकते और गवर्नमेंट बना सकते हैं, मगर कांग्रेस ने बात सुनी नहीं। उन्होंने अहमद भाई पटेल से बात किया, लोकल लीडर से बात किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी से भी बात किया, उपाध्यक्ष राहुल जी से भी बात किया, उसके बाद नहीं बने तो पब्लिकली मीटिंग बुलाई, उन्होंने बोला इतना इतना प्रॉब्लम है, हम कांग्रेस के साथ है, ये काम करो तो अपने कुछ अच्छा काम पार्टी के लिए कर सकते, वो भी नहीं सुने। तब उन्होंने क्लियर बोला था अगर आप नहीं सुनते बात तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा, क्लियरली बोला था।
ये थे शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला, जिनका कहना है कि कांग्रेस आला कमान ने उनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश नहीं की इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। और अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। जी दिलनवाज।
अमरीश, कल 10 साल उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी का आखिरी दिन था, उनका विदाई समारोह था और उन्होंने इसमें बयान दिया देश के मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है। उनके इस बयान पर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, इससे जुड़ी हुई खबरें अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की जो पार्टी है AIDMK, उसके जो 2 गुट हो गए थे वो एक बार फिर से साथ आ सकते हैं, ऐसी खबर भी अलग अलग अखबारों में आज पहले पन्ने पर है। और भारत की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक JP Infratech दिवालिया घोषित होगी, ये फैसला जो है ट्राइब्यूनल ने दिया है, तो बहुत से हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट्स खरीद रखे हैं उनके लिए शायद मुश्किलें आ सकती हैं, ये खबर भी आज अखबारों में पहले पन्ने पर है। पंजाब केसरी बता रहा है कि भारतीय सेना ने गांव खाली करा लिए हैं और डोकलाम को लेकर तनाव चरम पर है। इसके अलावा नई दुनिया की एक और खबर है जो ध्यान खींच रही है, एक बेटी ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे डर था कि उसकी शादी के लिए उसके पिता को कर्ज ना लेना पड़े, और अपनी जो उसने सुसाइड नोट लिखा उसने ये भी लिखा कि फसल जल गई अब मेरी शादी की चिंता है, कहीं आप खुदकुशी ना कर लें इसलिए मैं जान दे रही हूँ।
बहुत दुखद है ये दिलनवाज पाशा, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आतिशबाजी तो आपने कई बार देखी होगी लेकिन आज रात आप आसमान में ऐसे आतिशबाजी देख पाएंगे जो कुदरत का करिश्मा होगी। हम बात कर रहे हैं परसेइड मेटियोर शावर की, जो आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी की तरह नजर आएगा और 12-13 अगस्त की मध्य रात्रि से भोर तक अपने चरम पर होगा। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने खगोल वैज्ञानिक निमिष कपूर से बात की और पूछा कि इस खगोलीय घटना के होने के कारण क्या है।
ये एक खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसे हम मीटियोर शावर के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में उल्का पात कहते हैं। बहुत सारे जो कॉमेट हैं या पुच्छल तारे या धूमकेतु जो कहलाते हैं, ये हमारे सौर मंडल में घूमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी के कक्षा से भी होकर गुजरते हैं। तो उन्हीं में से एक कॉमेट है स्विफ्ट टटल, ये धूमकेतु है। और इसमें क्या होता है, धूमकेतु में बहुत सारा धूल कंकड़ पत्थर और बर्फ जमा रहती है, तो जब ये सूर्य के पास आते हैं और हमारे पृथ्वी के आंतरिक कक्षा के समीप आ जाते हैं तो ये जो इनके कण हैं ये मीटियोर कहलाते हैं बेसिकली, और ये हमें एक मीटियोर शावर की तरह, उल्का पात की तरह हमारे अर्थ से दिखाई देता है। तो हर साल 17 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में ये जो स्विफ्ट टटल धूमकेतु है या स्विफ्ट टटल कॉमेट है वो पृथ्वी के पास से गुजरता है, और स्विफ्ट टटल जो कॉमेट है उसी का जो मीटियोर शावर होना है, जिसका बहुत चर्चा है कि ये 11-12 अगस्त की रात में और 12-13 अगस्त की रात में हमको दिखाई देगा, मध्य रात्रि से जो सुबह का झुटपुटा कहते हैं जिसको, उसके बीच में ये दिखाई देगा। अद्भुत घटना है प्रकृति की। इस जो गति है, जो स्पीड है, वो जब हमारी अर्थ के ऑर्बिट में के पास आता है, अर्थ के ऊपरी वातावरण में आता है, तो उसकी जो स्पीड है वो 210,000 किलोमीटर पर आवर होती है।
जी, और खासतौर पर ये बताइए कि क्या ये पृथ्वी के हर कोने से दिखाई देता है, और खासतौर पर क्या भारत में हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, क्या वो भी इसे देख पाएंगे अपने अपने घरों की छतों से?
बिल्कुल बिल्कुल जी, ये पूरी दुनिया से दिखाई देता है। ये उत्तरी गोलार्ध से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, जो लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं। और आप जब आसमान में देखते हैं तो आपको अपनी निगाहें उत्तरी पूर्वी भाग में करनी पड़ेंगी। और ये जैसा कि हमारे विशेषज्ञ खगोल शास्त्री बता रहे हैं कि 12-13 अगस्त की रात में ये अपने चरम पर होगा, और इसको देखने के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंखों से इसे देख सकते हैं।
ये थे खगोलविद निमिष कपूर, जो आसमान में आज रात होने वाली रंग बिरंगी आतिशबाजी यानी मीटियोर शावर के बारे में बता रहे थे। झारखंड की आदिम जनजातियों में शुमार पहाड़िया आदिवासियों की हालत बेहद खराब है। इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। वजूद की लड़ाई लड़ रहे पहाड़िया आदिवासियों की समस्या तब और बढ़ जाती है जब उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ता है। पहाड़ पर बसने वाले इन आदिवासियों के संघर्ष को जानने के लिए हमारे सहयोगी रवि प्रकाश उनके बीच पहुंचे। सुनिए उनकी एक खास रिपोर्ट।
मैं तारा पहाड़ गांव में हूँ। राजमहल की पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव झारखंड के सुदूर साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड का हिस्सा है। साहिबगंज से मंडरो होकर यहां तक पहुंचने में मेरी गाड़ी कभी बिहार तो कभी झारखंड की सरहद से आंख मिचौनी करती है। इसका भूगोल पेचीदा है। गांव पहुंचने पर पता चलता है कि भूगोल की तरह इसका वर्तमान भी गड़बड़ है। इस गाँव में पहाड़िया आदिवासी रहते हैं, जिनके पास बताने के लिए सिर्फ उनका समृद्ध इतिहास है, जब उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी थी। तारा पहाड़ गांव में कुल 22 परिवार रहते हैं। सबका ताल्लुक उस पहाड़िया जनजाति से है जिन्हें झारखंड की सरकार ने आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। इनके संरक्षण के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, इसके बावजूद गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मैं समसी पहाड़िया से मुखातिब हूँ।
इस गाँव में हम लोगों का पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग वहाँ नीचे जाते हैं, पानी ढोक के लाते हैं यहाँ। जो हम लोग सरकार से बोल रहे हैं उसको नहीं मानता है।
पहाड़िया आदिवासियों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इनके विलुप्त प्राय होने का खतरा है। इस कारण सरकार ने इनके लिए PTG डाकिया योजना लागू की है। इसके तहत पहाड़िया परिवारों के घर पर हर माह 35 किलो चावल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन तारा पहाड़ में सरकारी अमला चावल पहुँचाने नहीं आता। यहाँ मेरी मुलाकात गंगू पहाड़िया से होती है।
हम लोग का 35 किलो मिलना जगह में 30 किलो मिलता है, वो भी 2 महीना बीत जाता है, इसके बाद 1 महीना देता है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने भाषणों में अक्सर उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हैं। वे चाहते हैं कि झारखंड की महिलाओं को पारंपरिक चूल्हा नहीं फूकना पड़े, इसलिए उन्होंने अफसरों को हिदायत दी है कि सभी BPL परिवारों को गैस का चूल्हा और कनेक्शन दिला दिया जाए। इसके बावजूद इस गांव की महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। चांदनी पहाड़ी ने BBC को बताया,
चूल्हा माटी से बना के बनाता है।
इस गांव में और किसी के पास है गैस?
नहीं।
दरअसल पहाड़िया जनजाति के लोगों का हाल जानने कोई भी अफसर यहां नहीं आता। ऐसे में उन्हें पता ही नहीं कि गांव के लोग किस कष्ट में जी रहे हैं। रवि प्रकाश, BBC के लिए तारा पहाड़, साहिबगंज में।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ सैन्य युद्ध विध्वंसक होगा और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यदि उत्तर कोरिया अमरीका पर हमला करता है तो चीन को तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन यदि अमरीका उत्तर कोरिया में शासन परिवर्तन की नीयत से हमला करता है तो चीन को हस्तक्षेप करके इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। क्यूबा में रह रहे अमरीकी राजनयिकों को सुनने में आई दिक्कतों की विचित्र कहानी में एक और मोड़ आ गया है। अब हवाना में कनाडाई दूतावास के कम से कम एक सदस्य ने बहरापन समेत ऐसे ही लक्षण होने की बात कही है। यूरोप के बाजारों में दूषित अंडे पहुंचाने का स्कैंडल और व्यापक हो रहा है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।